Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिष्यत्सुधर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। चार खंडात्मक इस उपनिषद के प्रथम दो खंडों के द्वारा ब्रह्म के निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन हुआ और तीसरे खंड के से प्रारंभ करके तीसरे खंड से चौथे खंड के छठवें मंत्र तक सगुण ब्रह्म के उपासना को श्रुति ने बताया। उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म का निर्गुण निराकार अर्थात निरुपाधिक एक स्वरूप और एक सोपाधिक स्वरूप है। निरुपाधिक स्वरूप को कहा जाता है ज्ञेय ब्रह्म, सोपाधिक स्वरूप को कहा जाता है उपास्य ब्रह्म। ज्ञेय ब्रह्म का जो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, इसे भी ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो सगुण ब्रह्म की जो उपासना है ये भी ब्रह्म विद्या है। वैसे उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म दो प्रकार का है, ज्ञेय ब्रह्म उपास्य ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म। निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान भी ब्रह्म विद्या है, तो सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान जिसे उपासना कहा जाता है वो भी ब्रह्म विद्या है। और ये जो सगुण ब्रह्म विद्या जिसे उपासना कहा जाता है, निर्गुण ब्रह्म विद्या जिसे ज्ञान कहा जाता है, दोनों का भी उपदेश आचार्य ने इस उपनिषद में चौथे खंड के छठवें मंत्र तक कर दिया, निर्गुण ब्रह्म विद्या को भी बता दिया, सगुण ब्रह्म विद्या को भी बता दिया। निर्गुण विद्या बता दी दो खंडों से, और सगुण ब्रह्म विद्या भी तृतीय खंड एवं चतुर्थ खंड के छह मंत्रों से बता दी गई। और उपनिषद शब्द का अर्थ भी होता है ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ ही होता है ब्रह्म विद्या। उपनि इन दो उपसर्गों से युक्त सद धातु से उपनिषद शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है आपके जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्मों का नाश करने वाली। उपनिषद शब्द का अर्थ है नाश करने वाली। जन्म मृत्यु के हेतुभूत अज्ञान कर्म और कामना को ब्रह्म विद्या नष्ट कर देती है। वो ब्रह्म विद्या है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। उसी से स्वरूप विषयक अविद्या और सभी कर्म तथा कामनाएं समाप्त होती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह मुंडक मंत्र यही बता रहा है कि अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक निर्गुण ब्रह्म विद्या जीव के जन्म मृत्यु के निमित्त को नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। इसलिए अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या को कहा जाता है उपनिषद। और उपनिषद शब्द का अर्थ होता है जो आपके जन्म मृत्यु को शिथिल कर दे। तो उपासना भी देवलोक में आपको पहुंचा करके सगुण ब्रह्म विद्या आपको देवलोक में पहुंचा करके यानी ब्रह्मलोक में पहुंचा करके जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूपी संसार है इस संसार के संसार को शिथिल कर देती है। जो ब्रह्मलोक में पहुंचता है शास्त्र बताता है उसे फिर इस संसार में इस कल्प में वापस नहीं आना होता। स्वर्गलोक में गए हुए तो आ जाते हैं जब पुण्य क्षीण होता है, लेकिन ब्रह्मलोक में जो पहुंच गए ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं उपासक सगुण ब्रह्म की उपासना करके जो ब्रह्मलोक में पहुंच गए तो वहां से फिर इस कल्प में उन्हें वापस नहीं आना होता। तो उनका जन्म इस कल्प में नहीं होना है, इसलिए उनके जन्म मृत्यु को शिथिल कर दिया। किसने? उपासना ने, ब्रह्मलोक में पहुंचा करके। इसलिए उपासना को भी सगुण ब्रह्म विद्या को भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। और ये जो सगुण ब्रह्म विद्या तथा निर्गुण ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है, और यह दोनों विद्याएं आपको उपलब्ध होती हैं वेदांत से, उपनिषद नामक ग्रंथों से। इसलिए उपनिषद नामक ग्रंथ को भी गौण रूप से उपनिषद इस नाम से कहा जाता है। मुख्य तो उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, और उस ब्रह्म विद्या का साधन उपनिषदें होने से, ये ग्रंथ होने से ग्रंथ को भी कहा जा रहा है कि ये उपनिषद है। तो जो उपनिषद है उसका उपदेश तो आचार्य ने यहां तक कर दिया, सगुण ब्रह्म विद्या भी निर्गुण ब्रह्म विद्या का भी, और शिष्य ने सुना भी। लेकिन यहां चौथे खंड के सातवें मंत्र में शिष्य गुरु से फिर प्रश्न कर रहा है। शिष्य का प्रश्न है गुरु के प्रति कि उपनिषदम भो ब्रूहि इति, विनय पूर्वक आचार्य जी को प्रणाम करके शिष्य ये कह रहा है कि हे भो, यानी हे भगवान, आप मुझे उपनिषद का उपदेश करिए। ये प्रश्न शिष्य का कब है? पहले एक प्रश्न शिष्य ने किया, केने शितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि से, प्रथम मंत्र से, प्रथम खंड के एक शिष्य का प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर भी आचार्य ने दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि द्वितीय मंत्र से। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इस द्वितीय मंत्र से लेकर के चौथे खंड के छठवें मंत्र तक आचार्य ने जो उपदेश किया है, जिस विद्या का उपदेश किया है, वह उपनिषद शब्द का अर्थभूत ब्रह्म विद्या है कि नहीं? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से निर्गुण ब्रह्म के ही स्वरूप का वर्णन हुआ है। निर्गुण ब्रह्म विद्या को कहा जाता है ब्रह्म विद्या ही उपनिषद। और जो ये सगुण ब्रह्म विद्या बताई गई वो भी तो ब्रह्म विद्या ही है, उपनिषद ही है। और आचार्य ने सगुण ब्रह्म विद्या भी निर्गुण ब्रह्म विद्या भी जो उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है वो बता दिया है, उसका उपदेश कर दिया है और उसे शिष्य ने सुन भी लिया है। और सुनने के बाद फिर ये प्रश्न कर रहा है कि उपनिषदम भो ब्रूहि इति, हे भगवान आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। उपनिषदम ब्रूहि का अर्थ है उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, इसलिए उपनिषदम यानी ब्रह्म विद्याम ब्रूहि, ब्रह्म विद्या बताइए। तो अभी तक जो आचार्य ने बताया क्या ये ब्रह्म विद्या नहीं बताई? उपनिषद ही तो बताइए। तो उपनिषद को सुन करके फिर उपनिषद को सावधान चित्त होकर के सुनने वाला जो शिष्य है यह प्रश्न करे, प्रार्थना करें कि आप मुझे उपनिषद का उपदेश करिए। ते प्रश्न क्या बताता है? या तो शिष्य ने बिल्कुल ही नहीं सुना जो बताया उपनिषद श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि से, वो बिल्कुल ही शिष्य को समझ में नहीं आया है, तभी कह सकता है कि उपनिषदम भो ब्रूहि, जो बताया वो उपनिषद ही तो बताया। और उपनिषद को सुन करके फिर यदि कोई कहे कि हे भगवान आप उपनिषद बताइए, तो ये प्रश्न उस व्यक्ति के अज्ञान को प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि अभी तक का उपदेश बिल्कुल जैसे उल्टे घड़े में बारिश हो जाए, खूब पानी गिरे लेकिन वो भरता नहीं है, वैसा ही हुआ। उपनिषद बताने पर भी फिर उपनिषदम भो ब्रूहि यह प्रश्न एक प्रकार से शिष्य के बिल्कुल अज्ञान को प्रकट कर रहा है। गुरु के द्वारा उपदिष्ट अर्थ विषयक सर्वथा अज्ञान ही है। या क्योंकि आचार्य कह रहे हैं उपनिषदम भो ब्रूहि, ये शिष्य ने प्रश्न किया और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य क्या कहते हैं, कि उक्ता ते उपनिषद, ते यानी तुम्हें, उक्ता यानी बता दी हमने, क्या तो जिसे तुम पूछ रहे हो, उपनिषद पूछ रहे हो, ब्रह्म विद्या पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हें हमने ब्रह्म विद्या बता दी। यानी आचार्य भी ये समझ रहे हैं कि हमने तो उपनिषद का ही उपदेश किया है, और आचार्य ने उपनिषद का उपदेश करने पर भी शिष्य पुनः उपनिषद का उपदेश करिए ये कह रहा है, या तो शिष्य का गुरु के द्वारा उपदिष्ट अर्थ विषयक सर्वथा अज्ञान ही प्रकट हो रहा है, या क्या अभिप्राय हो सकता है। तब भी बीच में शिष्य ने एक दूसरा प्रश्न किया, जब गुरु ने कहा कि उक्ता ते उपनिषद, हमने तुम्हें उपनिषद का उपदेश कर दिया है, बता दी है उपनिषद, तो शिष्य ने सोचा कि जो आपने उपनिषद बताई वह ब्रह्म विषयक नहीं होगी, कोई और उपनिषद होगी। उपनिषद शब्द का अर्थ रहस्य भी होता है, कुछ रहस्यात्मक और बात बताई होगी, परम रहस्य जो परमात्मा है उसका ज्ञान नहीं कराया है, और हम उपनिषद शब्द को बताइए इस प्रश्न के द्वारा ये बता रहे हैं इस प्रार्थना से कि हमें परमात्म विषयक ज्ञान का उपदेश करिए। तो आचार्य शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ब्राह्मीम वाव ते उपनिषदम अब्रूम, हे शिष्य, हे जिज्ञासो, मैंने श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनोसो मनोयत यहां से लेकर के तदह तद्वनम इत्युपासित यहां तक के ग्रंथ से तुम्हें ब्रह्म विषयक ही उपनिषद का उपदेश किया है। अब्रूम का अर्थ उपदेश किया, बताया, हमने तुम्हें ब्राह्मी उपनिषद ही बताई है। ब्राह्मी उपनिषद कहते हैं ब्रह्म विद्या को। तो ब्रह्म विद्या आचार्य ने बताई और शिष्य ने सुनी, और तब भी ब्रह्म विद्या बताओ करके कहता है शिष्य। तो यहां पर इस गुरु शिष्य का जो ये संवाद हुआ सातवीं कंडिका में, इसका क्या अभिप्राय निकल सकता है शिष्य के प्रश्न का? क्या शिष्य कुछ समझ नहीं पाया? यदि समझ नहीं पाया तो पहले कहा भी नोष्ण है, नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, और योनस तद्वेद तद्वेद, इससे बताया कि मैं ब्रह्म को अच्छे जानता हूं और मेरे जैसा हम लोगों में जो जानता है वही वस्तुतः ब्रह्म का ज्ञाता है। इसका अर्थ है कि जो आचार्य ने बताया है उसे उसने ठीक से सुना है, विषय का ज्ञान भी हुआ है, तब भी उपनिषदम भो ब्रूही ये कह रहा है। इसका अर्थ है कि शिष्य का अभिप्राय वो तो समझ गया है कि ब्रह्म विद्या का ही उपदेश हुआ है, लेकिन इस अभिप्राय से प्रश्न है कि क्या मोक्ष का साधन भूत जो ब्रह्म ज्ञान है वो जो आपने बताया सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या, वह निर्गुण ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ भूत अकेली ही अपने फल को प्रदान करने में समर्थ है, या कुछ अंगों से विशिष्ट होकर के वह मोक्ष की साधन बनती हैं, दूसरे सहयोगी की भी ब्रह्म विद्या को अपना फल अधिकारी को देने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जैसे कुलाल मिट्टी से घड़ा बनाता है, लेकिन मिट्टी हो और कुम्हार हो, इतने मात्र से ही घड़ा नहीं बनता। उसके लिए मिट्टी को गीला करने के लिए पानी की भी आवश्यकता है। तो मिट्टी को घुमाने के लिए चक्र की भी आवश्यकता है, और चक्र को घुमाने के लिए दंड की भी आवश्यकता है। तो कुलाल मिट्टी से घड़ा बनाता है, लेकिन मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए कुलाल को आवश्यकता होती है चक्र की, पानी की, दंड की। इन सब के सहयोग से मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है कुलाल। ऐसे ही जो श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से ब्रह्म विद्या बता दी गई, वह ब्रह्म विद्या अकेली ही अपना फल मोक्ष दिलाने में समर्थ है या किसी सहयोगी की अपेक्षा करती है मोक्ष के लिए, ये अभी शिष्य के मन में प्रश्न है। और यदि केवल ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष होता है, बंध की निवृत्ति होती है, तो आप अवधारण करके बता दीजिए कि हाँ, जो ब्रह्म विद्या बताई वह अकेली ही अपना फल देने में समर्थ है, ये निर्धारित करके बता दीजिए। और नहीं, यदि किसी सहयोगांतर की उसको जरूरत है, सहयोगी की अपेक्षा करके अपना फल बंध निवृत्ति रूप संपादन करती है ब्रह्म विद्या, तो जो सहयोगी है ब्रह्म विद्या के उसको आप बताइए। इस अभिप्राय से शिष्य ने प्रश्न किया और आचार्य ये बताते हैं कि ब्रह्म विद्या को मोक्ष संपादन करने के लिए अपना फल मोक्ष रूपी जो है वह अधिकारी को दिलाने के लिए किसी भी सहायक अंतर की आवश्यकता नहीं है। जो उक्त ब्रह्म विद्या है वह अकेली ब्रह्म विद्या ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति ही साक्षात्कारात्मिका समूल बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष दिलाने में समर्थ है। जैसे प्रकाश को, अंधकार को निवृत्त करने के लिए किसी भी दूसरे सहयोगी की आवश्यकता नहीं है, अकेला प्रकाश ही कितना भी घना अंधकार हो उसे निवृत्त करने में समर्थ है, किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं करता अंधकार को निवृत्त करने के लिए प्रकाश। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या बंध को निवृत्त करने के लिए, जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म को हटाने के लिए किसी भी सहयोगी की अपेक्षा नहीं रखती, प्रकाश के तरह अकेली ही अज्ञान रूपी अंधकार को तथा अज्ञान रूपी अंधकार का कार्य जो अध्यास है उसको निवृत्त करती है। ये आचार्य जी का भी अभिप्राय है। इसलिए कहा कि ब्राह्मीम वावते उपनिषदम अब्रूम, मैंने तो तुम्हें मोक्ष की साधनभूत ब्रह्म विद्या का ही उपदेश किया है और वहां फल भी बता दिया उसका। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, समस्त बुद्धिवृत्तियों का प्रकाशक जो चेतन है, अवभाषक जो चेतन है, वह चेतन मैं हूं। ये ज्ञान है ब्रह्म विद्या, और इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया प्रतिबोध विदितम मतम से। और ये सम्यक ज्ञान क्यों है, कहते इस अकेले सम्यक ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्वम ही विन्दते, यानी जिस कारण से अधिकारी को अमृतत्व यानी मोक्ष दिलाने में अकेला यह ज्ञान ही समस्त बुद्धिवृत्तियों का साक्षी चेतन मैं हूं इत्याकारक ज्ञान ही अमृतत्व दिलाने में समर्थ है। अकेला ज्ञान उस कारण से जैसे अकेला प्रकाश अंधकार को दूर कर रहा है, दूर करने में समर्थ है, तो केवल ब्रह्म विद्या ही अमृतत्व का साधन है और अमृतत्व की साधन भूता ब्रह्म विद्या मैंने तुम्हें बता दी है। ब्राह्मी वाव ते उपनिषदम अब्रूम। ब्रह्म भाव में अवस्थित करने वाली जो उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, वह तुम्हें हम दे चुके हैं। अब इस प्रकार मुख्य रूप से तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, अमृतत्व, और उस अमृतत्व की प्राप्ति का साधन है उपनिषद शब्द का अर्थभूत ब्रह्म विद्या। और आचार्य जी ने बता भी दिया कि वो ब्रह्म विद्या हम तुम्हें बता चुके हैं, तो अब क्या बताना बाकी रह गया? तो मुख्य अधिकारी के लिए तो कुछ भी अब बताना अवशिष्ट नहीं रहा, लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या है वो जिस अधिकारी के अंतकरण में स्थिर हो जाती है, ब्रह्म विद्या को धारण करने की योग्यता जिस अंतकरण में होती है वह अंतकरण है अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म संस्कारित अंतकरण, सुसंस्कृत शुद्ध सूक्ष्म अंतकरण में ही, निर्दोष अंतकरण में ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उपनिषद धारित होती है, टिकती है, अन्यत्र नहीं टिक पाती। उपनिषद शब्द का अर्थभूत अहम ब्रह्मास्मि यह जो साक्षात्कार है, प्रमा है मोक्ष का साधनभूत ब्रह्म विद्या, इसे कहा जाता है उपनिषद रूपी शेरणी का दूध।